19, text number 42.
आज हम स्कंद संख्या 8 श्लोक अध्याय संख्या 19 श्लोक संख्या 42 पर चर्चा करेंगे.
अथैतत् पूर्णम्
अभ्यात्मम्
यच्च
नित्यमृतम् वचः
सर्वम्
नित्यमृतम्
ब्रूयात् श्वासम् मृतः अथैतत् पूर्णम् अभ्यात्मम् यश्च नित्यमृतं वचः सर्वं नित्यमृतं ब्रूयात्
सदुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः यच्च नित्यमृतं वचः सर्वं नित्यमृतं
भूयात्
सदुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः से पहले हमें इसकी भूमिका समझनी होगी कि यहां पर क्या घटना चल रही है.
So before we go any further, let's say the Guru Parampara pranams, please.
Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया शुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitasya Hiro Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tatya Kanchani Gaurangi Shri Radhe Vrinda Maneshwari Vrishudhanam Sute Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyasya Kripa Santubhya Ivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauri Bhakta Vrinda Rama Hare Hare Narayanam Namaskritya Narachaira Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tatojayam Udirahe Nashta Prayeshya Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Ashloke Bhaktir Bhakti Nishthiki.
So I'm going to read the 41st verse so you see the context for 42.
तो अब मैं 41 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा ताकि आप आगे का समझ सकें कि 42 और 43 में क्या दिया है।
This is Sukracharya speaking.
यहाँ पर शुक्राचार्य कह रहे हैं ये श्लोक।
Sukracharya is the guru of Bali Maharaj.
शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरु हैं।
Sukracharya is a partial expansion of Lord Shiva.
शुक्राचार्य भगवान शिव के एक अंश अवतार हैं।
He's playing the role of a materialistic Brahman.
और यहाँ पर वो एक भौतिक भौतिकतावादी आचार्य का रोल कर रहे हैं।
Very attached to Pratistha position.
जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा और अपनी अवस्था के प्रति बहुत आसक्त हैं।
Attached to money.
और मन से बहुत आसक्त, पैसे से बहुत आसक्त हैं, यश से बहुत आसक्त हैं,
honor,
सम्मान के प्रति,
and comfortable living,
और आरामदायक जीवन के प्रति आसक्त हैं।
Enjoyment. So he is what's known as a sakama personality.
और वो एक सकाम व्यक्ति हैं।
Sakama means one who is on a spiritual path, but they're full of material desires.
सकाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि अध्यात्म के मार्ग पर है लेकिन उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं।
The word kama is well known to mean lust.
काम का सामान्यतः अभिप्राय काम से होता है।
But in a broader sense, the word kama means desire also.
लेकिन काम का अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका अर्थ इच्छा से भी लिया जा सकता है।
So kama, sakama means who is having all kinds of material desires.
सकाम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं।
But they may be on the path of civilization anyways.
फिर भी वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हो सकते हैं।
So Shukracharya is such a personality like that.
तो शुक्राचार्य उसी प्रकार के व्यक्ति हैं।
Perhaps the most powerful yogi in the universe.
और वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली योगी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में।
Bali Maharaj was the king of the demons.
बलि महाराज राक्षसों असुरों के राजा थे।
So Shukracharya was trying to advise him.
और शुक्राचार्य उन्हें सलाह देते थे।
When Lord Vamana appeared, Lord Vishnu appeared in the Brahman boy incarnation, Vamana Deva.
तो जब भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बालक के रूप में वामन देव के रूप में प्रकट हुए,
a trick.
तो उन्होंने एक ट्रिक किया, उन्होंने छल किया।
But Durvasa Muni very clever.
लेकिन दुर्वासा मुनि बहुत चतुर, शुक्राचार्य बहुत चतुर हैं।
And he could understand that this Brahman boy was Lord Vishnu in disguise.
तो वे शुक्राचार्य समझ गए कि ये जो ब्राह्मण बालक है, ये छिपे हुए रूप में भगवान विष्णु हैं।
So the incarnation Vamana Deva is asking for three steps of land.
और वामन अवतार यहाँ पर तीन पद भूमि मांग रहे हैं।
Lord Shiva Charya is warning him, no, this is not ordinary warrior. No, don't do this.
और शुक्राचार्य उन्हें मना करें नहीं ये साधारण बालक नहीं है इसे मत दो
First with one step, he will take half the universe.
तो एक पहले पग में वो आधा ब्रह्मांड नाप लेंगे
the other step, he'll take the other half of the universe.
और दूसरे पग में वे दूसरा जो बचा हुआ आधा भाग है ब्रह्मांड का वो नाप लेंगे
third step, he won't be able to deliver because already the whole universe, he will take.
तो और वो तीसरा पैर नहीं रख सकेंगे क्योंकि पूरा ब्रह्मांड दो पग में कवर कर
लेंगे
और क्योंकि फिर आप ब्राह्मण के प्रति वचन का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा तो यहाँ पर शुक्राचार्य भगवान विष्णु को बलि महाराज को तीन पग भूमि का दान देने से मना कर रहे हैं भगवान विष्णु को क्योंकि इससे उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी
You know, somebody in a big corporation, some from body from outside comes and makes a takeover offer. Happens all the time in business. A takeover offer, and such, you know, means of course I'll buy your business, no problem.
तो बाहर बड़ी-बड़ी कंपनियों में हम देखते हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आता है और उस पूरे की पूरी कंपनी को का मालिक बन जाता है।
Somebody's trying to tell the CEO, no, don't do it because that man is a crooked, you know, and you're going to lose everything.
और उस समय कोई CEO जो कंपनी का CEO है, उसे कोई सलाह देगा, नहीं, तुम इसे मत दो क्योंकि ये तुम्हें छल कर लेगा तुमसे।
And then the advisor to the CEO is really thinking, well, I mean, if he bankrupts the business by this. And selling a business to a crooked businessman, then I'll be out of a job. I won't have any position. I won't have money. I won't have such qualification.
तो वो व्यक्ति सलाह इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर दूसरा छल करने वाला व्यक्ति सारा बिजनेस ले लेगा, तो उसकी भी नौकरी चली जाएगी.
Well, this is Supercharya's position that he's not any better than this materialistic advisor to a CEO of a multi-crore.
और शुक्राचार्य की भी यही स्थिति है जैसे कि एक भौतिकतावादी सलाहकार हो जो कि बहुत बड़ी कंपनी में सलाह देता हो
So this is what he was advising in text 41 this is giving his advice to Bali Maharaj
और इसी प्रकार की सलाह श्लोक संख्या 41 में शुक्राचार्य बलि महाराज को दे रहे हैं
He says the utterance of the word om signifies separation from one's monetary assets.
तो यहाँ अनुवाद में शुक्राचार्य कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य से धन धान्य के वियोग का सूचक है।
In other words, by uttering this word, one becomes free from attachment to money because his money is taken away from him.
दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है
That's interesting because Brahmins are always chanting mantras with Om.
ये बहुत ही रोचकर है क्योंकि ब्राह्मण सदैव ओम का उच्चारण करते रहते हैं
But in the Vedic system, the Brahmanas would be given hundreds of millions of crores of value in elephants, gold, jewels, sometimes pretty girls also, everything. Would be given to Brahmanas in the Vedic age.
और वैदिक संस्कृति में वैदिक समय में ब्राह्मणों को बहुत करोड़ों लाखों हाथी धन आभूषण स्त्रियां आदि दी दान में दी जाती थी
But they wouldn't try to keep it.
लेकिन वे उसे नहीं रखते थे अपने पास
They in turn would also give in charity. This is a Vedic system.
और ब्राह्मण भी आगे इस सब दान को वापस दान कर दिया करते थे ये संस्कृति है वैदिक संस्कृति
So Supracharya is trying to tell Bali Maharaj, watch out, you're going to end up a poor man, and he's going to take everything away, you're going to be bankrupt, and then he's secretly thinking, I'll be out of a job. I won't have sex gratification. I won't have any palace to live in anymore. Nothing. Come on, don't do this. Don't do this. My salary will be cut. Shukratality.
शुक्राचार्य भी सलाह दे रहे हैं बलि महाराज को कि आप ये दान मत दो, दान मत दो, ये सब कुछ लूट ले जाएगा, आपका दिवालिया निकल जाएगा। और छिपे हुए रूप में उनकी मानसिकता ये है कि इससे मेरी भी नौकरी चली जाएगी, मेरी इंद्रिय तृप्ति भी चली जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि शुक्राचार्य एक ब्राह्मण है। और इसी कारण से वे बलि महाराज के गुरु हैं।
So he continues, to be without money is not very satisfactory.
और फिर श्लोक संख्या 41 में वे आगे कहते हैं, किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है।
So we see in his own admission, he's attached to money.
और यहाँ हमें पता लगता है कि उनकी धन के प्रति आसक्ति है।
Whereas a pure Brahmin is not concerned, money or no money.
जबकि एक शुद्ध ब्राह्मण धन के प्रति आसक्त नहीं होता, उसे कोई परवाह नहीं है कि धन है या नहीं है।
Like Krishna's dear friend, Sudama,
जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम मित्र सुदामा,
living in total poverty,
जो कि पूरे रूप से गरीबी में रहते थे,
he just accepted that as his lot in life. He never complained.
और उन्होंने कभी भी इसके लिए दोष नहीं निकाला, कभी कंप्लेन नहीं की। और उनके पास कभी कभी खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं होता था, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ही पतले दुबले थे। सामान्यतः स्त्रियां घर के प्रति आसक्त होती हैं।
So she was not very happy with the situation. It was a, too much austerity.
और इसलिए उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी भी खुश नहीं थी घर की ऐसी स्थिति को देख करके। और सामान्यतः ये नियम है कि स्त्रियां तपस्या में बहुत ज्यादा निपुण नहीं होती हैं, कुछ कुछ अपवाद होते हैं।
One day she says to Sudama, my dear husband, you got Krishna now your friend and you were schoolmates and now he's in a very big position, king, prince in Dwarka. Why don't you go see him? Because he surely will give you a charity and he'll relieve our situation of total poverty.
तब सुदामा ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि आप आपके एक मित्र हैं श्री कृष्ण जो कि बहुत बड़े राजा हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो आपको दान में बहुत सारी चीजें देंगे जिससे कि हमारी गरीबी मिट जाएगी।
But Sudama was detached. She didn't care. Just whatever the Lord is providing or not providing, it's all right with me. Just it's up to the Lord whether I have money or don't have money. I'm not going to ask anything.
लेकिन सुदामा ब्राह्मण पूरी तरह से विरक्त थे। वे नहीं सोचते थे कि ये भगवान की इच्छा है कि वो देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो वे इस तरह से पूरे पूर्ण रूपेण विरक्त थे। लेकिन उनकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं था। तो जैसा कि आज के समय पत्नी अपने पति से कह देती हैं कि हे प्रियतम, आपको एक अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी चाहिए।
We can't afford to keep the Nikes on the feet of our kids unless you get a better job.
तो हम हमारे बच्चों को भी अच्छे वस्त्र नहीं पहना पा रहे हैं। अच्छा होगा कि आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें।
So this is the modern mentality.
तो ये आधुनिक मानसिकता है।
So she's saying, why don't you just go ask, go see Krishna. Krishna will help you out financially. He's your old friend. He's very wealthy now, king, prince. You just go ask him, for some charity. That's all. Because you're a Brahmin, you can ask for charity, no problem.
तो इसी तरह सुदामा ब्राह्मण की पत्नी भी उन्हें सलाह दे रही हैं कि आप क्यों नहीं अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण के पास जाते। अब वे एक राजा हैं और राजा दान देते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, वे आपको भी दान देंगे।
But Sudama didn't really want to ask Krishna for anything.
लेकिन वास्तविकता में सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं।
But since his wife was really, really begging him and
लेकिन उनकी पत्नी उन्हें बहुत ही मजबूर कर रही थी, उन्हें पुश कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अच्छा मैं जाता हूँ श्री कृष्ण के
पास।
तो सामान्यतः ये सदाचार है कि अगर आप किसी से मिलने जाएं तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर जाएं। लेकिन सुदामा ब्राह्मण इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ चावल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।
So he just bundled up the rice in a small cloth and then he went off to work with Sri Krishna.
और इसलिए उन्होंने वो थोड़े से चावल अपने गठड़ी में बांधे और वे द्वारका की ओर भगवान श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े।
He was very poor and unkempt due to living in poverty, so he was not in a very clean, high-class condition when he arrived at the gate.
और क्योंकि सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, तो वे जब द्वारका में गेट पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, तो वे साफ सुथरे भी नहीं थे।
The gatekeeper's tried to bar him from entering.
और तब वहां पे जो दरवाजे पर संतरी खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो उन द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि नहीं, हम भिखारियों को अंदर नहीं जाने देते, आप अंदर नहीं जा सकते। तो किसी तरह से संदेश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया, तब द्वारपालों को सुदामा ब्राह्मण को अंदर जाने देना पड़ा।
When Sudama appeared before Krishna, he was ashamed and embarrassed.
जब सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे तो वे बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे थे।
So he hid the little bag of cloth with rice and hid it behind his back.
तो उन्होंने उस छोटे सी गठड़ी को जिसमें चावल थे उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया।
Of course, Krishna recognized him and knew who he was.
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञात हो गया कि सुदामा ब्राह्मण क्या है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न थे।
So he welcomed, embraced him, and welcomed him and washed his feet. The picture, the painting is there in Srimad Bhagavatam.
तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया, उन्हें बिठाया, उनके चरण का प्रक्षालन किया और ये फोटो श्रीमद् भागवतम में भी है।
But still, Sudama was holding this little bag of rice behind his back. He was embarrassed.
और क्योंकि सुदामा ब्राह्मण लज्जित अपने आप को महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो चावल का गठड़ी पीछे छिपा रखा था।
Generally, you're supposed to bring gold and gems and opulent offerings, so these fancy fruits, costly things you're supposed to bring to a prince or a king, not just a little bag of rice,
क्योंकि सामान्यतः ये शिष्टाचार है कि राजा के पास जाते समय कुछ स्वर्ण आभूषण मोती इत्यादि लेकर के जाएं, लेकिन क्योंकि वे सुदामा ब्राह्मण चावल लाए थे तो इसलिए वो लज्जित महसूस कर
रहे
और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, अंतर्यामी है, तो हमें ज्ञात हो गया कि सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ चावल लाए हैं। तो उन्होंने सुदामा ब्राह्मण से कहा, ओ मुझे लगता है तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। लाओ लाओ मुझे दो, मुझे चाहिए वो। तो सुदामा ब्राह्मण ने उनसे क्षमा मांगी कि नहीं नहीं मैं कुछ थोड़े चावल है बस मेरे पास। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए। और उन्होंने वो जो गठड़ी थी वो सुदामा से छीन ली और वो तुरंत ही वो चावल खाने लग गए भगवान श्री कृष्ण और वो पूरा गठड़ी समाप्त करने वाले थे। और रुक्मिणी जी वहीं पर थी तो उन्होंने वो ये सब देख रही थी और क्योंकि वे लक्ष्मी हैं, भाग्य लक्ष्मी हैं,
bag of rice and he was going to eat the whole bag actually, no problem.
और वे ये देख रहे थे कि भगवान पूरा का पूरा चावल की गठरी खत्म करने वाले हैं
और
रुक्मिणी जी वहां पर पहुंचती हैं और भगवान को रोकती कि नहीं नहीं आपने पर्याप्त ले लिया है अब और मत लीजिए
Maybe you won't even have enough the wealth to give him for how much wealthy he'll become by eating the rest of that bag of rice.
Rukmini ji bhayabhit thi ki agar Bhagwan ne ye sare chawal kha liye to ye itne bhagyashali ho jayenge ki Bhagwan bhi inko unhe lauta nahi payenge.
But Sudama never asked for anything.
Lekin Sudama Brahman ne Bhagwan se kuch nahi manga.
So then finally he just offers his obeisances He was just happy to see Krishna, and he didn't ask Krishna for anything.
और सुदामा ब्राह्मण भगवान से मिलके बहुत प्रसन्न थे. वे भगवान को प्रणाम करते हैं अंत में और जाने लगते हैं, लेकिन वे भगवान से कुछ भी नहीं मांगते.
And so then he left Dwarka without taking any money, no gold, no jewels, nothing.
और इस प्रकार वे द्वारका से बिना कुछ लिए, कोई भी आभूषण, कुछ भी स्वर्ण, कुछ भी लिए बिना ही चले चल पड़ते हैं.
And he was not concerned that maybe he was going to be scolded by his wife. He wasn't concerned.
और उन्हें इस चीज की भी चिंता नहीं थी कि अब उनकी पत्नी उन्हें डांट लगाएगी कि वे कुछ नहीं लेकर आए.
He went to Dwarka, you know, supposed to come back with some money, you know, something, some gold or jewels or something.
और उनसे उम्मीद की जा रही थी सुदामा ब्राह्मण से कि वे द्वारका गए हैं तो कुछ ना कुछ स्वर्ण धन इत्यादि लेकर आएंगे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांग सके. और वे कुछ भी धन गाय इत्यादि बिना लिए ही भगवान से लिए बिना ही वहां से जा रहे थे. और इस तरह से सुदामा ब्राह्मण को यह बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उनकी पत्नी निराश होंगी कि वे कुछ नहीं लाए हैं. तो मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी किसी भी प्रकार की सकाम इच्छाएं नहीं थी, कोई फूटी मेंटेलिटी नहीं थी, उन्हें फल की इच्छा नहीं थी, वे भले कुटिया में रह सकते थे. लेकिन जब वे अपनी कुटिया के सामने पहुंचे, तब उन्हें वहां मिला कि उनकी कुटिया के स्थान पे एक बहुत बड़ा महल बन गया है और उस महल में बहुत सारे आभूषण हैं, बहुत सारी धन संपदा है. भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से ये सब बना दिया था, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा था. तो यहाँ पर मूल बिंदु यह है कि अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, भगवान के शरणागत होने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं है.
Purport of the story. Don't be frugal, but Krishna will help you. And it doesn't mean you're going to become a millionaire, but at the same time, you're not going to, you know, simply end up with nothing if you surrender to Krishna.
तो आप इस कथा का तात्पर्य यह है कि आप भगवान को देने से, भगवान के प्रति शरणागत होने से प्राप्त ही करते हैं, आपको लाभ ही होता है, आप कुछ भी खोने वाले नहीं हैं.
Point is that Shukracharya was the exact opposite.
और यहाँ पे मूल बिंदु है कि शुक्राचार्य इसके पूर्ण रूप से विपरीत थे. इंद्रिय तृप्ति, धन इत्यादि के प्रति बहुत आसक्त.
So he says to Bali Maharaj, to be without money is not very satisfactory.
इसलिए वे बलि महाराज से कहते हैं कि धन विहीन होना ठीक नहीं है.
For in that position one cannot fulfill one's desires. See how fruitful this is.
क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता. तो यहाँ से पता लगता है कि वे कितने सतामी
हैं.
दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है.
especially when one gives charity to a poor man or a beggar, one remains unfulfilled in self-realization and in sense gratification. So, I mean, out front he's saying I'm interested in sense gratification.
तो विशेष आगे अनुवाद है, शुक्राचार्य कहते हैं, विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रहते हैं।
So then this is why in the 42nd verse Shukracharya is saying, therefore the safe course is to say no to his request, because you're going to end up in poverty. This is not good, which means I'm going to be out of a job. And I won't have any happiness, I won't have money, I won't have sense gratification, I won't have a palace, nothing. And so, you know, and neither were you going to have anything, and he's going to take away everything, and so you're a fool.
So, is इसी continuation में 42वें श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, अतः सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। तो इससे पता लगता है कि शुक्राचार्य की कैसी मानसिकता है, उन्हें लग रहा है कि भगवान सब कुछ ले लेंगे और ना तो मेरे पास कुछ धन रहेगा, ना महल रहेगा, ना बलि महाराज के पास कुछ भी रहेगा।
So he says, therefore the safe course is to say no. In other words, I'm not going to give you what you're asking for.
तो नहीं कहने का अभिप्राय है कि जो भी आप मांग रहे हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता।
Although it is a falsehood, it protects one completely. It draws the compassion of others towards oneself, and it gives one full facility to collect money from others for oneself. So this mentality, materialistic mentality.
तो आगे शुक्राचार्य कहते हैं, यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है, इससे दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा होती है। तो यहाँ पे ये भौतिक
Nonetheless, if one always pleads that he has nothing, he is condemned.
फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी निंदा होती है।
For he is a dead body while living, or while still breathing, he should be killed. This is a heavy statement. So now he's getting very heavy. Shukracharya is getting very heavy here, suggesting that it's a dharma to give in charity if it's going to cut into your sense gratification. It's very he's very off materialist.
तो यहाँ पे शुक्राचार्य बहुत ही बड़े भौतिकतावादी के रूप में कह रहे हैं, फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए।
So now we'll read from Srila Prabhupada's purport.
अब हम प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ेंगे।
Beggars always present themselves as possessing nothing, and this may be very good for them because in this way they are assured of not losing their money and of always drawing the attention and compassion of others for the sake of collection.
तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, भिखारी सदैव अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट होने की संभावना नहीं रहती और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यानाकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है।
But this is also condemned.
किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है।
Just like in Navadvip Dham, if you're taking the boat to go across the Jalangi.
जैसा कि नवदीप धाम में अगर आप जालंगी नदी को क्रॉस करना चाहते हैं और एक नाव लेते हैं,
there are rows of beggars there.
तो वहां पर बहुत सारे भिक्षुक भिखारी बैठे होते हैं,
very much like they should give them some money.
और वे चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ धन दें।
Well, then you say, okay, so you can give them some money, but the Dhanasar Phoni Thakur advised that yes, one should give charity to even to beggars.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये संदेश देते हैं, निर्देश कि हमें भिक्षु को भी भिखारी को भी दान देना चाहिए।
But if they're ordinary beggars, you should make them chant Hare Krishna. If they won't chant Hare Krishna, they're demon, then don't give them anything.
लेकिन हमें भिखारियों को हरे कृष्ण जप कराना चाहिए, अगर वो जप नहीं करते हैं तो राक्षस हैं, उन्हें मत दीजिए। और क्योंकि ये भिखारी भी नवदीप धाम में हैं, तो ये बहुत ही उन्नत हैं, क्योंकि ये धाम में हैं, ये वैष्णव हैं।
But still, you give them charity and then they will buy tea and vidis.
और अगर आप उन्हें दान देते हैं तो वे या तो चाय खरीदेंगे या बीड़ी खरीदेंगे।
So Sukhacharya continues, if one purposely continues this professional begging, he is supposed to be a dead while breathing, or according to another interpretation, such a man of falsity should be killed while still breathing.
आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यदि कोई जानबूझकर भिक्षा को पेशा बना लेता है तो वह जीवित ही मृत माना जाता है, या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए।
The Vedic instruction in this regard is as follows: Atitat purnam abhyatmanam yam neti sa yat sarvam neti bhuyat apikasya kirtir jayate shainam tatraiva anyat. If one continuously poses himself as possessing nothing, collects money by begging, he should be killed.
इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार है, अतः तत् पूर्णम अभ्यात्मम यन नेति सयत सर्वम नेति ब्रूयात पापिकास्य कीर्ति जायते सैनम तत्रेव हन्या। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग करे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए।
So we'll read the 43rd verse also.
अब हम 43 श्लोक भी पढ़ेंगे।
In flattering a woman to bring her under control.
अनुवाद इस प्रकार है, अपने वश में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में।
In joking in a marriage ceremony.
हास परिहास में, विवाह उत्सव में।
In earning one's livelihood.
अपनी जीविका कमाने में।
When one's life is in danger,
प्राणों का संकट उपस्थित होने पर,
in protecting cows and Brahminical culture,
गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने,
or in protecting a person from an enemy's hand,
या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में,
falsity is never condemned,
असत्य भाषण को कभी निंदनीय नहीं माना जाता।
So Sukhacharya is trying to make it. Paint a picture that this is an emergency, and so therefore you should lie.
तो यहाँ पर शुक्राचार्य इस तरह से घटना बना रहे हैं कि ये एक इमरजेंसी है और आप यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं।
बलि महाराज is the grandson of प्रहलाद महाराज.
किंतु बलि महाराज प्रहलाद महाराज जी के पोते हैं।
So although he is playing the role of a demon, actually in his blood, so to speak, is Vaishnava.
लेकिन यहाँ पर भले ही वो एक असुर राज का किरदार कर रहे हैं, उनकी भूमिका में है, लेकिन उनके रक्त में एक भक्त, एक वैष्णव का रक्त है।
So when he realizes that his so-called guru is actually deviating from Sanatana Dharma, then he rejects. He refuses to follow Shukracharya.
और जब बलि महाराज ये देखते हैं कि उनके गुरु एक वैष्णव वैष्णव संस्कृति से अलग हो रहे हैं, उनसे डेविएट हो रहे हैं, तो वे उनको त्याग देते हैं।
Well, this is an example of when a guru should be rejected, when it's clear, according to Shastra, that personality is deviating from pure dharma, then they must be rejected.
तो ये एक उदाहरण है कि जब कोई एक सनातन धर्म से, शुद्ध सनातन धर्म से कोई डेविएट हो रहा है, कोई विचलित हो रहा है, तो उसका त्याग किया जा सकता है, उस गुरु को त्याग कर सकते हैं।
So Srila Rupa Goswami, he is teaching the path of pure devotional service.
Srila Rupa Goswami शुद्ध भक्ति का मार्ग बतलाते हैं।
It's made very clear in the nectar devotion.
और ये भक्ति रसाम में सिंधु में उन्होंने बताया है।
His full Sanskrit name is Bhakti Rasamrita Sindhu.
उस ग्रंथ का संस्कृत में नाम है भक्ति रसामृत सिंधु।
Sudama, but certainly not fitting the actions of Sukhacharya.
तो जो जो भक्ति की शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है वो सुदामा ब्राह्मण पे पूरी तरह से लागू होती है और शुक्राचार्य पर बिल्कुल नहीं।
So recite Srila Rupa Goswami's shloka. If you know it, then you can recite it along with us.
और अगर आप वो श्लोक शुद्ध भक्ति की परिभाषा का श्लोक जानते हैं तो हमारे साथ दोहरा सकते हैं।
That one should understand what is pure devotional service.
तो हर किसी को समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे वरिष्ठ शिष्यों में से हैं, वे शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं जो हमें समझनी चाहिए।
So the goal of self-realization is not attained by jnana, not just by knowledge.
तो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य ज्ञान या फिर योग से प्राप्त नहीं होता है।
Not by yoga.
ना ही योग से।
Not by fruitive activity.
ना ही fruitive activity. सकाम कर्मों से
पर ओनली बाय प्योर डिवोशन सो ओनली बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा
सिर्फ और सिर्फ यह शुद्ध भक्ति से और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होने से यह लक्ष्य मिलता है।
सो वी आर नॉट अ रूपदुगस वी आर फॉलोइंग इन द लाइन ऑफ श्री रूप गोस्वामी
और हम रूप अनुगा कहलाते हैं क्योंकि हम रूप गोस्वामी जी के पद चिन्हों पर उनकी परंपरा में आते हैं।
सो वी हैव टू टेक द एग्जांपल फ्रॉम सुदामा द ब्राह्मण नॉट द एग्जांपल फ्रॉम
तो हमें सुदामा ब्राह्मण जी के उदाहरण से सीखना चाहिए शुक्राचार्य के उदाहरण से नहीं। शुक्राचार्य पूर्ण रूपेण ऑफ थे।
I'm not suggesting if you're a married man or a woman that you have to live in poverty in order to be Krishna conscious. I'm not saying that.
मैं यह नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो यहाँ पर विवाहित पुरुष और स्त्री गृहस्थ आश्रम में हैं कि उन्हें पूर्ण रूपेण गरीबी में रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ना ही प्रभुपाद ने ऐसा कभी कहा।
वेल्थी पर्सन्स हु गिव जेनरसली टू श्री प्रभुपाद टू हेल्प पुश ऑन दिस मूवमेंट।
तो कई धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभुपाद की मदद की प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने में।
The point is that money has to be used properly.
यहाँ पर मुख्य बिंदु यह है कि धन का सही उपयोग होना चाहिए।
If you have money and you don't use at least a portion of it for devotional service, then you are crippled.
अगर आप भक्ति के लिए भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने धन का उपयोग नहीं करते हैं तो आप कृपण कहलाते हैं।
Same word in English. Yes. Don't be crippled.
कृपण मत बनिए, कंजूस मत बनिए।
Nowadays people are very dishonest. And I'm talking about congregation now. This kind of congregation are not honest with themselves. They live in a fantasy land. Oh yes, I'm devotee. I love Krishna. Everything's fine. But can you give a donation? Well, times are tight.
आज के समय जो इस्कॉन के congregation है, वो भी काफी हद तक इस मानसिकता में है कि जब वे अपने आप को मानते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन जब दान के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं अभी बहुत कठिनाई चल रही है। तो वे कहते हैं कि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अगली बार दान करूंगा।
With his wife's family and his family, an extended family on both sides, and cousins and their cousins' children, you know, and they all get together, you know, 20 people, and they go out to dinner at a 5-star hotel.
तो वही व्यक्ति जो दान देने के लिए मना कर रहा है, वो अपनी तरफ के अपने भाइयों बहनों अपने माता पिता और अपनी पत्नी की तरफ के माता पिता भाई बहन सभी के साथ में एक 5-star होटल में रात्रि के समय खाना खाने जाएगा।
I've had many devotees these extended families going on like this five-star hotel, and then after that going to multiplex cinema.
और मुझे devotees,
not demons, devotees.
मुझे कई भक्तों ने बताया है कि ये कई ऐसे गृहस्थ हैं जो अपनी बढ़ी हुई इस पूरे परिवार के साथ में पहले खाना खाने फाइव स्टार होटल में जाते हैं और फिर बहुत बड़े सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं और वे एक ही रात्रि में 10,000 से 15,000 रुपए खर्च कर देते हैं
This is not good. Don't be like Shukracharya.
तो लेकिन जब उनसे भक्त लोग 2,000 रुपए मांगते हैं तो वे कहते हैं नहीं अभी समय बहुत कठिन चल रहा है तो आप ऐसा मत बनिए शुक्राचार्य की तरह मत बनिए.
Don't be a cheater. Don't be a rascal. Don't try to cheat Krishna.
भगवान को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए धूर्त मत बनिए.
Shri Prabhupada told us, don't try to cheat Krishna because he is a better cheater than you are.
प्रभुपाद कहते थे भगवान श्री कृष्ण को धोखा देने का प्रयास मत करो क्योंकि वे आपसे भी बड़े धोखेबाज हैं. भगवान नंबर वन चीटर है.
So everybody knows Krishna's cheater.
हर कोई जानता है कि भगवान धोखा देते हैं.
Just like in the battle of Kurukshetra, he vowed he would not get taking sides in the battle of Kurukshetra, you know.
जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये घोषणा की थी कि वे किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे युद्ध नहीं करेंगे और भीष्मदेव भी ये जानते थे लेकिन भीष्मदेव ने भी ये संकल्प लिया कि वे भगवान श्री कृष्ण को वे भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे और वे कई ऐसे अपशब्द कह रहे थे भगवान को.
You are too sympathetic to these Pandavas. They are the enemy, but you are going easy on them because of your prior relationship. So what is this nonsense? You know, you're not faithful to me. You're faithful to our enemy. Talking like this, you know.
दुर्योधन क्षमा कीजिएगा भीष्मदेव नहीं कह रहे थे दुर्योधन भीष्मदेव को कहते हैं कि आप पांडवों के प्रति बहुत आसक्त हैं आप पांडवों की को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं आप उनसे सही प्रकार से युद्ध नहीं कर रहे हैं.
So Kshatriyas are very proud, you know, they cannot handle this kind of nasty fighting language insults, they cannot take that. You cannot insult a Kshatriya, they will fight it.
और क्षत्रियो में बहुत गर्व होता है वो कभी भी अपमान नहीं सहन कर सकते आप उनको अपशब्द नहीं कह सकते.
So then Bhishmadev said, "All right, today I will kill Arjuna."
तो इसलिए भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली अच्छा मैं आज ही अर्जुन का वध कर दूंगा.
So then he fought extra hard because after all he was a master. He was old man supposedly, but he was Maharati, strength of 10,000 elephants.
और हालांकि भीष्मदेव एक बुजुर्ग व्यक्ति थे लेकिन उन वे महारथी थे उनमें 10,000 हाथियों का बल था.
So he was fighting with all his strength and he was a super warrior and he was a teacher, he was a professor of the Pandavas. He taught them how to fight, you know.
और क्योंकि भीष्मदेव परम योद्धा थे वे उन्होंने पांडवों को सिखाया युद्ध करना.
So actually Arjuna was in difficulty because Arjuna was going to be in difficulty because Bhishmadeva was fighting so strongly that he was going to actually be able to kill Arjuna, so that Krishna would not tolerate that.
और इस तरह से अर्जुन कठिनाई में पड़ गए थे क्योंकि भीष्मदेव बहुत ही कौशल के साथ में पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को भी ये लगा कि अर्जुन कठिनाई में आ गए हैं.
So he stepped in and he took up that chariot wheel and he came against Bhishmadeva and he was ready to kill Bhishmadeva with the chariot wheel.
और फिर भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और वे भीष्मदेव को की हत्या करने के लिए उस रथ के पहिये को उठाकर दौड़े.
The painting is there very nicely. The source Arjuna is pulling on Krishna's leg. No, no, don't do it, because you can see Krishna's angry, you know. No, you're not going to kill my Arjuna. And then Krishna's very angry, actually. And Arjuna's pulling on his leg. No, no, don't do it, because he knows. Certainly Krishna can kill Bhishmadeva, but others cannot. Krishna can kill him easily. With his chariot wheel weapon, he can kill him, no problem.
और फिर एक बहुत ही सुंदर चित्र भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भाग रहे हैं और अर्जुन उनके पैरों को पकड़े हुए हैं कि नहीं नहीं आप भीष्म देव को मत मारिए।
So therefore he was pulling on Krishna's leg. No, no, and tried to stop him.
और अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भीष्म देव का वध कर देंगे, तो इसलिए अर्जुन ने मना कर रहे थे, नहीं नहीं आप भीष्म देव को मत मारिए। और बहुत ही सुंदर ये चित्र बनाया गया है और कई जगह पे हम ये डायरामा भी देखते हैं जहाँ पे ये चित्र को ही डायरामा में बनाया गया है।
So Krishna's jigging.
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण छल करते हैं।
So therefore in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna.
इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं।
You may declare it boldly that my devotee never perishes.
इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप ये घोषणा करिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता।
Now he has to back it. Then Krishna has to back it. Well, Arjuna says, okay, then I have to back it.
और भगवान श्री कृष्ण को यह अर्जुन से कहलवाना पड़ा कि अर्जुन आप कहिए।
So we are meant to stick with this path, pure devotional service, as close as possible in the mood of Bhakti Maharaj and not in the mood of Shukracharya.
तो हमें शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए, नजदीक से नजदीक चल सके और हम बड़ी महाराज के मूड उनकी मानसिकता के रूप में हमें चलना चाहिए, ना कि शुक्राचार्य की मानसिकता से। किन्हीं का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण, दो क्वेश्चन है। पहला ये कि जैसे महाराज ने कहा कि शुक्राचार्य जी शिव परम वैष्णव शिव के अवतार है, तो शिव जी परम वैष्णव है, तो शुक्राचार्य जी बाबा महाराज के भगवान के अनिष्ट में क्यों है, उनका ऐसा चरित्र क्यों दिखाने के भगवान के।
भगवान शिव भगवान विष्णु के विरुद्ध नहीं है, ये एक लीला है।
Have you read Krishna book?
क्या आपने कृष्ण पुस्तक पढ़ी है?
At least three times there's fight between Lord Shiva and Krishna. At least three times.
कम से कम तीन बार भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ है।
And Lord Shiva always loses.
और हर बार शिव जी हार जाते हैं। उसे नारायण जर से हार माननी पड़ती है और उसे दंडवत प्रणाम करने पड़ते
हैं।
तो ये भी एक लीला है और भगवान इस लीला से कुछ सिखा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि शास्त्रों में यह ज्ञान दिया गया है कि हमें शुक्राचार्य की मानसिकता नहीं धारण करनी चाहिए।
So for that he uses his devotee role playing.
तो इस शिक्षा को देने के लिए भी अपने भक्तों को प्रयोग करते हैं कि वे किरदार निभाएं।
Don't do like this. So not ordinary person is going to interact with Lord Krishna.
तो कोई भी साधारण व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उनसे नहीं मिलजुल कर सकता है।
So he's using, Lord Shiva's taking that position just to show who's really going to win and who's really going to win is the devotee of the Lord.
तो भगवान शिव ये किरदार निभाते हैं कि वे इस घटना में आते हैं कि कौन जीतेगा।
There may be setbacks. There may be temporary defeat.
हो सकता है कि क्षणिक रूप से भगवान हारे।
Like in Russia, our movement has been temporarily defeated by demoniac forces.
और जैसा कि रूस में कई सारे असुरों की सेना की वजह से हमारे जो आंदोलन है इस्कॉन का आंदोलन उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो वे नहीं जीतेंगे, असुर नहीं
जीतेंगे. They tried to ban the Bhagavad Gita.
तो जैसा कि पूर्वी रशिया, पूर्वी रूस जहां साइबेरिया है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट थी, वहां पे जो सरकार थी, वे रोमन कैथोलिक चर्च के निर्देशन में वे भगवत गीता को बैन करना चाहते थे, बंद करना चाहते थे.
Usually published all over the former Soviet Union how they were trying to ban the Bhagavad Gita in Siberia, and it was published a high media event all over the former Soviet Union.
तो जो पहले सोवियत रूस था उसमें ये पूरी जगह प्रचार किया गया कि किस तरह से साइबेरिया में भगवत गीता को बैन किया जा रहा है.
So actually the Russians are very intelligent.
लेकिन रूसी लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं.
They're not so much sheep like some people are around the world are just sheep, whatever a politician does.
लेकिन रूसी व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वे अन्य लोगों की तरह नहीं होते कि जो भेड़ चाल चले.
So the Russians said, "Oh, so you're banning this book, huh? Government is banning this book."
तो रूस के जो साधारण व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि ये जो राजनीति के हैं, राजनेता हैं, वे भगवत गीता को बैन करना चाह रहे हैं.
History, they suffered under the government, you know.
तो ये एक लंबा इतिहास है कि किस तरह से उन्होंने रूस के लोगों ने इस सरकार किस तरह से लंबे समय तक रूस के साधारण व्यक्ति रूस के राजनेताओं से उन्होंने कष्ट झेले.
So government is banning the book.
तो उन्होंने ये सोचा कि जो सरकार है वो.
Let me read the book and I'll decide whether they're right or wrong. This is the mentality. See, they're intelligent, so they say, "Well, I don't trust this government. Maybe they're right, maybe they're wrong. I'm going to read the book myself and find out." Very intelligent.
रूस के साधारण व्यक्ति ने ये सोचा कि अच्छा सरकार ये भगवत गीता बैन करना चाहती है तो मैं देखता हूँ कि ये बुक क्या है, भगवत गीता सही है या गलत है. मैं सरकार की बात नहीं मानूंगा, मैं खुद निर्धारित करूंगा कि ये बुक बैन होनी चाहिए या नहीं. मैं
So there are so many devotees in the former Soviet Union, thousands and thousands.
तो इस सरकार की इस घटना से ही साधारण लोग भी भगवत गीता पढ़ने लगे और लाखों करोड़ों भगवत गीता वहाँ पर वितरित हुई, जिससे सभी लोगों ने भगवत गीता पढ़ी.
This is the Lord's long-standing pastime that there are setbacks and then there are victories.
तो ये भगवान की लीला होती है कि पहले भक्तों को नुकसान होता है और बाद में बहुत प्रचार होता है. और शुक्राचार्य भी इसी तरह का किरदार निभा रहे हैं. ये भगवान की लीला को, भगवान के प्लान योजना, भगवान की योजना को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे कि वामन लीला हो सके. किन्हीं और का कोई प्रश्न?
धन्यवाद महाराज. महाराज जी, जैसे गाय जीविका कमाने के लिए भी कोई झूठ का सहारा ले सकता है, कि शास्त्रों में प्रमाण है इसका, या ऐसा कैसे?
So many examples of cheaters.
शास्त्र में कई उदाहरण हैं कि जहां पर चीटर्स या फिर धोखेबाज लोगों ने ऐसा किया हो, जैसा कि पुंडरक का एग्जांपल आता है, पुंडरी. तो पांडरक ये कह रहा था कि मैं वास्तव में विष्णु हूँ.
Sends a message to Krishna. You surrender your disc to me, and I am the real Lord Vishnu. And so crazy man. So he's asking him to surrender. So he wants to make money then off of being fake Krishna.
तो वे भगवान श्री कृष्ण से पांडव कहता है, वे वह एक पागल था, वह कहता है कि आप अपने चक्र को मुझे दे दीजिए.
So Krishna sends back a message, says, I'll surrender my chakra to you, no problem. I'll do so by cutting your head off, which he did.
तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये संदेश भिजवाया कि मैं अपना चक्र आपको दूंगा और मेरे चक्र से सर काट कर मैं आपको अपना चक्र दूंगा.
But this cheating business has been going on, cheating. It's called Dharma Kaitava. This is why the Srimad Bhagavatam begins Dharma Kaitava. You see, that this Bhagavad Purana is kicking out cheating religion. This is why it begins like that. You understand?
यह एक कैटव धर्म है, और धोखा देना, धोखाधड़ी करना, यह कैटव धर्म है. इसलिए भागवतम जो शुरू होता है वो इन कैटव धर्मों को सभी को लात मारती है.
All kinds of cheating in the name of religion, and this is been cheating in the name of religion has been going on since time immemorial. It's not something new. Only in Kali Yuga it gets worse. The Brahman is sitting there next to a Shiva Linga, and then he's smoking vidai, and he's collecting money, and he's using it for his daughter's wedding. These things are going on. But this has been going on. This kind of cheating has been going on since time immemorial.
और धर्म के नाम पर धोखाधड़ी बहुत समय से है. आज के समय जैसा हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण शिवलिंग के पास बैठा होता है और बीड़ी पी रहा होता है और धन एकत्रित करता है अपनी पुत्री की शादी के लिए.
तो another pastime involving Lord Shiva is Daksha. He was such a materialistic cheater like that, collecting opulence for his own sense gratification in the name of religion. So he also a cheater, you know.
और जैसे कि शिवजी के ससुर दक्ष का भी उदाहरण आता है शास्त्रों में कि वो भी धोखाधड़ी कर रहे थे, वो भी धन एकत्रित कर रहे थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए.
Have you read Bhagavatam?
क्या आपने भागवतम पढ़ा है?
Story of Daksha.
आपने दक्ष कथा पढ़ी है, दक्ष जी की, दक्ष की कथा?
You have heard, but you have not read Prabhupada's books.
आपने सुना है, लेकिन आपने प्रभुपाद की पुस्तक में नहीं पढ़ा है.
Your homework assignment is you read the whole story of Daksha, then you will understand. Yes, cheating is going on in the name of religion since the very beginning of creation.
तो जब आप यह भागवतम में यह घटना पढ़ेंगे, दक्ष की कथा, तो आप समझेंगे कि सृष्टि के प्रारंभ से ही धोखाधड़ी चल रही है.
Anything else?
और किसी का कोई प्रश्न?
Okay, thank you very much. Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai. Granchala Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Bhagavan Krishna Balaram ki jai. Itai Gopamanandi Hari Hari Bolo.
Param Pujaniya Bhakti Madhava Govinda Goswami.